हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 18 एंड 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम ख्यातिमृंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहकणरघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिचनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय। अध्याय 12 श्लोक संख्या 18 एंड 19। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अतिथि मधुर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, समह शत्रौ च मित्री च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समह संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मानि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान्मे प्रियो नरः। समह शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान्मे प्रियो नरः। समह शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समह संग विवर्षितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः। शब्दात् समः शत्रौ च मित्रे च, समः मना एक समान, शत्रु यानी शत्रु में च तथा मित्रे च यानी मित्र में, तथा मान अपमान, तथा मन उसी प्रकार, मान यानी सम्मान में, अपमानयो यानी अपमान में, शीतोष्ण, शीत माना जाड़ा यानी सर्दी, और उष्ण यानी गर्मी, सुख दुखे, सुख यानी सुख और दुख यानी तकलीफ में, समह संग विवर्जित, सम माना संभाव, संग विवर्जित यानी समस्त संगति से मुक्त, आसक्ति से बिल्कुल मुक्त, और तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि, तुल्य माना एक समान, निंदा अगर कोई अपयश करता है तो भी, और स्तुति यानी यदि उसकी स्तुति करता है, उसका यश बढ़ाता है तो भी, मौनी यानी मौन, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाई एकदम संतुष्ट, ये न केनचित जिस किसी तरह, जो भी है सिचुएशन, जो भी है सरकमटेंसेस, वो संतुष्ट रहता है, अनिकेत बिना गरबार के, स्थिर दृढ़ मतिर संकल्प, भक्तिमान में प्रियो नरह, भक्तिमान यानी ऐसा भक्ति में लगा रहा भक्त में, मुझको प्रिय नरह, मुझे बहुत ज्यादा प्रिय लगता है ऐसा मनुष्य। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घरभार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी किसी की निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश या अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है, वह अत्यंत धैर्यवान होता है, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास यानी रहने की जगह की कोई सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में, जहां पर भी भगवान सुविधा करें, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति भी आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महत् गुण, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों की को विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण इसमें से ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरुतु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनतारणम् मोकं कुरुतु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनतारणम्। श्रीमद्भगवद्गीता चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12 जिसका शीर्षक है भक्ति योग, यानी भक्ति के द्वारा हमें भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना है। क्योंकि इस अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने पूछा भगवान से, जो आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं या जो निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से अधिक से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने बता दिया कि अर्जुन, जो मेरे साकार स्वरूप की भक्ति करता है, मन मुझ में लगाता है, मेरा चिंतन करता है, वो मेरे लिए अधिक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे मत से वो अधिक श्रेष्ठ है। बाकी जो दूसरे हैं, जो निराकार की उपासना करते हैं, वो भी मुझ तक पहुंचेंगे तो सही, परंतु क्लेशो दिक्कतरस्तेषां, उनके रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियां हैं। और इतना बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे ये भी बता दिया कि क्योंकि भक्तों की सुरक्षा मैं स्वयं करता हूं। वास्तव में भक्तों भक्ति जो है वो सुसुखम है और सुसुरक्षित है, सुसुगम है। सुरक्षित इसलिए है क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, तेषाम अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मैं स्वयं उसको जन्म मरण के सागर से पार निकाल लेता हूं। भवामि न चिरात्, उसमें कोई भी देर नहीं करता, विलंब नहीं करता। तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण हमें ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 13 से लेकर कि मुझे कौन कौन से भक्त प्रिय लगते हैं। और यहाँ हम भक्तों की क्वालिटीज पढ़ रहे हैं कि एक भक्त के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज जो है वो भगवान को अपनी ओर आकर्षित करती है और भगवान को उससे प्रेम करने के लिए विवश कर देती है। भगवान ने कहा 13 में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, सर्वभूतानां चाहे कोई भी हो, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मैत्र सबका मित्र है, और करुणा उसके हृदय में सबके लिए करुणा है, निर्ममो किसी भी वस्तु के लिए हृदय में आसक्ति नहीं है, निरअहंकार कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरा है, मैं कुछ हूँ, वो हमेशा अपने आप को दास मानता है, सम दुख सुख क्षमे, सुख आए या दुख इस भौतिक जगत में कुछ भी उसे प्राप्त हो अथवा ना हो या प्राप्त होने के बाद छिन जाए, वो समान रहता है, सबको क्षमा कर देता है, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखता, संतुष्ट सततम सदैव संतुष्ट रहता है, चाहे उसकी इच्छा पूरी हो या ना हो, वो क्योंकि उसकी इच्छा क्या होती है भक्त की कि मैं कैसे भगवान को खुश करूं। तो यदि उसको दुखी दुख आता है तो भी वो यही सोचता है कि भगवान यदि मुझे दुखी देखकर खुश हैं तो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि वो दृढ़ यदात्मा दृढ़ निश्चय, वो दृढ़ निश्चय के साथ भगवान के समर्पित होता है। इसे भगवान कहते हैं मैं अर्पिता मनोबुद्धि, जो अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करता है, यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और आगे 15 में, यस्मान नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते, यह जो किसी से भी विचलित नहीं होता और ना ही दूसरों को परेशान करता है, हर्षामर्ष भयोत्वेक है, हर्ष हो या दुख हो, मतलब सुख हो या दुख हो, भय हो या चिंता उस सब से मुक्त है, मतलब उसको ये भौतिक वस्तुओं से कुछ लेना देना होता नहीं है। वो भक्त से यह सच में प्रिय है, ऐसे भक्त से मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। अनपेक्षा किसी से भी इच्छा नहीं रखता, शुचिर सदैव पवित्र रहता है, दक्ष एक्सपर्ट है, उसे पता है कि मुझे मेरे जीवन को सक्सेस करने के लिए क्या करना चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि इस संसार में मैं ज्यादा धन अर्जित कर लूं या ज्यादा सम्मान प्राप्त कर लूं तो मुझे मतलब आनंद प्राप्त होगा। वो जानता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, तो दक्ष है, उदासीन हो, इसलिए भौतिक वस्तुओं की ओर कोई आकर्षण नहीं होता है। गतव्यथ, वो सारे कष्टों से आजाद है क्योंकि जानता है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। ये दुख और सुख तो सर्दी और गर्मी की तरह इस भौतिक शरीर को आते हैं, इसलिए वो सारे कष्टों से आजाद होता है। सर्वारंभ परित्यागी, इसलिए भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल नहीं करता है। यो मद भक्त स मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय लगता है। आगे 17 में भगवान ने कहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न हर्षित होता है और न ही शोक करता है। बार बार भगवान बताते हैं, हम पता नहीं कब सीखेंगे इस बात को, कब समझेंगे। छोटी छोटी बात को हम कितना हृदय पर लेते हैं, छोटी छोटी बात पर दुखी होते हैं, छोटी छोटी बात पर खुश होते हैं, लेकिन भगवान बार बार बताते हैं, अर्जुन ये दुख और सुख तो केवल इस भौतिक शरीर के कारण है, तुम तो ये भौतिक शरीर नहीं हो, फिर ये दुख और सुख क्यों तुम्हें स्पर्श करते हैं? ये तो सर्दी और गर्मी की तरह आएंगे जाएंगे, तो उसके लिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसे भगवान बता रहे बार बार, यो न हर्षति न द्वेष्टि, जो न ज्यादा हर्षित होता है और न ही शोक करता है, न शोचति न कांक्षति, जो न पछताता है और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। इच्छा ही समस्त दुख सुख और चिंता का कारण है। उसके मन में केवल एक ही इच्छा होती है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, और जब अपनी इच्छाएं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए परिवर्तित हो जाती हैं, तो फिर किसी भी चीज में दुख और ग्लानी या चिंता नहीं होती है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। इसलिए किसी भी कार्य का कोई परिणाम नहीं चाहता भक्त। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। आज भगवान कहते हैं, समा शत्रु च मित्रे च, कोई उसके साथ शत्रुता करता है या मित्रता करता है, मगर वो सबके साथ समान होता है। वो जानता है कि ये शत्रुता मेरे शरीर के साथ है, मेरी आत्मा के साथ तो उसका कुछ भी लेना देना नहीं। ये मित्रता मेरे इस भौतिक आवरण के साथ है, मेरे साथ तो उसका कोई संबंध नहीं है, तो वो इक्वल रहता है क्योंकि वो आत्मा में स्थित रहता है। वो किसी के साथ भी शत्रुता नहीं करता है, उसके मन में कभी ऐसा आता नहीं है कि वो मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है, क्योंकि वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध केवल कृष्ण के साथ है। तथा मान अपमान, हम इस संसार में देखें अपने मान और अपमान के लिए हम कितना चिंतित होते हैं, कि कोई अगर हमें थोड़ा थोड़ा सा भी अपमान होता है तो हमें कितना दुख होता है, और अगर सम्मान मिलता है तो हृदय कितना आनंदित होता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं मान और अपमान में सम रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं तो दास हूँ। अब दास का क्या मान क्या सम्मान, दास को किसी भी वस्तु मान और सम्मान कुछ भी लेना देना नहीं उससे, क्योंकि वो जानता है ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा। ये सब सम्मान जो मिल रहा है वो भगवान को मिल रहा है, और अगर मेरा अपमान हो रहा है तो वो तो इस देह का हो रहा है, मेरा संबंध तो कृष्ण के साथ है, मैं तो आत्मा हूँ। इस देह का यदि कोई अपमान कर रहा है तो भी उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। शीतोष्ण सुख दुख, सर्दी हो या गर्मी हो, सुख हो दुख हो, सम वो सब में बराबर रहता है, क्योंकि उसे वो जानता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो मुझे अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। समह संग विवर्जित, संग विवर्जित मतलब कुसंग से हमेशा अलग रहता है, भले ही वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो किसी भी बुरे व्यक्ति के साथ जो कि जिसके आचरण बुरे होते हैं उसके साथ संगति करता है, नहीं, वो दक्ष होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो दक्ष होता है, उसे पता होता है कि मेरी भक्ति किस तरह से उन्नति होगी। बाकी जो कर रहे हैं उनके साथ ना तो उसकी शत्रुता है ना मित्रता है, लेकिन वो हमेशा इस पॉइंट पर रहेगा दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे आगे बढ़ना है, भक्ति में उन्नति करनी है, इसलिए वो केवल भक्तों का संग करेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। भले ही कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारे लिए तो सब बराबर, तो हम किसी के साथ नहीं। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि असत्य संग त्याग ए वैष्णव आचार, कि अगर आप अपने आप को वैष्णव कहलाना चाहते हो, यदि वैष्णव का आचार आचरण जानना चाहते हो, तो पहला आचरण उसका यह है कि वो असत्य संग का त्याग करेगा। जो कृष्ण भक्त नहीं है उनके साथ कभी भी संगति नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि माया बहुत प्रबल है, तो फिर वो असत्य जो है वो मेरी भक्ति का विनाश करेगा। असत कोई ऐसा अपराधी व्यक्ति के साथ बैठ जाएगा, खाली उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, खाली उसके मुख से निकले हुए वैष्णव के प्रति के चार निंदा के शब्द भी यदि वो सुन लेगा तो भी तो उसकी भक्ति को कितनी हानि होगी। इसलिए वो एक्सपर्ट होता है संग विवर्जिता, वो असत्य संग का त्याग करता है। लेकिन कोई उसके बारे में कुछ भी बोलता है, तुल्य निंदा स्तुति, चाहे वो कोई उसकी स्तुति करता है कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा भगत है ये है, या तो कोई उसकी निंदा करता है कि ये तो खाली ढोंग करता है, खाली माला लेकर घूमता है, बाकी आचरण तो इसका, कोई भी उसको कुछ भी बोलता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे कार्य करे कि लोगों को बोलने का मौका मिले। भक्त इतना एक्सपर्ट होता है, वो अपनी लाइफ को इतना अच्छे तरीके से गुजारता है कि लोग जो है ना उनको मौका भी नहीं देता है, क्योंकि भक्त क्या होता है, सबके साथ करुणामय होता है। वो जानता है कि यदि कोई मेरे बारे में भी बुरा बोलेगा तो उनका पतन हो जाएगा, इसलिए वो कोई भी खुद से ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे दूसरों को अवसर प्राप्त हो कि वो भक्त की निंदा करें। लेकिन यदि कोई निंदा करता है, अगर कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि ना वो जैसे मक्खी होती ना, मक्खी वो भले ही पूरा शरीर इतना साफ सुथरा होएगा ना, उधर नहीं बैठेगी, कहां पर अगर थोड़ा सा जख्म होगा ना उसके ऊपर बैठेगी, क्योंकि उसका स्वभाव ना गंदा। तो लोग क्या होते हैं, भक्त इतना अच्छा होगा, सुबह से जप करेगा, भगवत भक्ति करेगा, भगवान की सेवा करेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, लेकिन फिर भी उसमें से बुराई ढूंढ ही लेते हैं, है ना, कि इसके अंदर ये बुराई है, लेकिन उससे भक्त को कोई ना विचलित नहीं होता है कि ठीक है, वो जानता है कि मेरा कृष्ण मेरे, और जब वो उसको पता चलता है कि मेरे अंदर ये बुराई है तो वो अवश्य उसको सही करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि वो डीट बन जाए कि भले ही ठीक है मैं भक्ति कर तो रहा हूं ना, फिर भी वो लोग तो भक्ति भी नहीं करते। नहीं, भक्त के अंदर गुण होना चाहिए कि वो अपनी बुराइयों को ठीक करे, और उसका तरीका भी अभी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे करते हैं। आगे कहते हैं मौनी, मौनी का मतलब होता है वो बेफिजूल की ना बकबक नहीं करता, जो भी जिस तरह से बोल रहा है उसको उसी तरह से वो डील करे, ऐसे नहीं, वो मौनी होता है, यानी कि वो जब बात करता है तो केवल भगवान के विषय में ऐसी बात करता है जिससे उसका भी लाभ हो और दूसरों का भी लाभ। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो अनर्गल आलाप, यानी बेहुदा बकवास नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की बात करता है, जहां पर आवश्यकता होती है वही बात करता है, इसलिए उसको मौनी कहा जाता है। संतुष्ट हो ये न कहना चित, जो भी उसको कुछ प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, कुछ भी हो उसके साथ, वो संतुष्ट रहता है क्योंकि वो जानता है कृष्णास प्लान्स आर मोर बेटर देन माय ड्रीम्स। मैं चाहता था कि मुझे ये प्राप्त हो, मेरी इच्छा थी, मगर कृष्ण ने नहीं दिया, उसी में मेरा कल्याण है। इसलिए क्योंकि वो दृढ़ निश्चय के साथ भगवान को समर्पित होता है, श्रद्धा होती है उसकी, इसलिए अनिकेत वो अपने लिए घर बार की भी परवाह नहीं करता। ऐसा नहीं सोचता कि मुझे बहुत अच्छा बंगलो मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए जिसमें मैं आनंद से जीऊं। वो किधर भी रह लेगा, स्थिर मत ही, क्योंकि उसकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर होती है, संकल्प उसका दृढ़ होता है। और भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है, भक्तिमान में प्रियो न रहा। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान ये सारे गुण इसलिए बता रहे हैं ताकि यदि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर यह सारे गुण विकसित करने चाहिए। क्योंकि सद्गुणों के बिना कोई भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, है ना। अगर आप ये कहलाना चाहते हो कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं कृष्ण को प्रिय लगूं, तो हमारे अंदर ये सारे जो गुण हैं वो विकसित होने चाहिए। लेकिन इसको विकसित करने के लिए हम एक एक गुण को मतलब पॉइंट नहीं करेंगे कि भाई मुझे अद्वेष्टा होना है, मुझे करुण होना है, मुझे विनम्र होना है, मुझे मतलब असंतुष्ट होना है, ऐसे ऐसे सारे गुणों को चिंतन नहीं करेंगे। इस सारे गुणों को डिवेलप करने के लिए श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 में 5.18.12 बहुत ही सुंदर, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं अपने तात्पर्य के अंतिम छोर में, वे कहते हैं हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करने चाहिए। ये आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अभी तो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहती है यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, यस्यास्ति मतलब जिसके अंदर है क्या भक्ति, कौन सी भक्ति, भगवत यानी भगवान की भक्ति जिसके अंदर है, और कैसी भक्ति है, अकिंचना निष्काम भक्ति है। यदि उस भक्ति के द्वारा वो कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं कर रहा है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, तो क्या होगा उसका लाभ, सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा, सर्वै गुणस्तत्व, सर्वै का मतलब होता है सारे के सारे, जो गुण यानी उत्तम गुण जो हैं वो उसके अंदर, तत्र समासते उसके अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर निवास करेंगे, उसके अंदर विकसित होंगे। कौन से गुण, सुरा जो देवताओं के अंदर पाए जाते हैं। वह व्यक्ति यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, निष्काम भक्ति करता है, सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, जैसे देवताओं के अंदर जो जो गुण होते हैं वो उसके अंदर आके समाविष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता और अलग से उन गुणों को विकसित करने का प्रयास करता है, तो शास्त्र कहता हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो हरि का भक्त नहीं है, तो उसके अंदर शुद्ध जो गुण होते हैं वो होना संभव नहीं है। महत् गुणा उत्तम गुण, कुतो में कहां से आएंगे। अब गुण आते कैसे हैं, क्योंकि ये सारे गुण भगवान के हैं, भगवान के अंदर अनंत अनंत गुण हैं, और जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो फिर वह गुण हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। यह गुण ऐसे नहीं है कि संसार से हम कहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जो अच्छी क्वालिटीज हैं, महत् गुण जो होते हैं वो भगवान के अंदर हैं, और जब भक्त भगवान की निष्काम भक्ति करता है तो फिर वो सारे गुण विकसित होने लगते हैं। परंतु हराव भक्तस्य कुतो महान गुण, जो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो उसके अंदर अच्छे गुण कहाँ से आएंगे, क्योंकि वो क्या करता है, मनोरथे नास्ति धावती बह, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कामनाओं को, मनोरथों को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, तो भला उसके अंदर शुद्ध गुण कहाँ से आएंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर अपने अंदर यह सारे गुण जो भगवान को प्रिय लगते हैं उनको विकसित करने का एक बहुत ही सरल उपाय बताया जा रहा है कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत यकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत गुण मनोरथे नास्ति धावतो बही। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के अध्याय 8 में आदि लीला के अंतर्गत भक्तों के कतिपय गुणों का वर्णन है। जैसे हरिदास पंडित जो हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। वो अत्यंत ही सशिष्ट है थे, सहनशील, शांत, विशाल हृदय तथा गंभीर उनको बताया गया। इसके अतिरिक्त भी जो भी भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज महाराज का कथन है कि वैष्णवों के शरीर में समस्त गुण प्रकट होते हैं और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णवों तथा अवैष्णवों में अंतर किया जा सकता है। केवल हमारे बाह्य स्वरूप को देखकर नहीं, हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, उसी से पता चलता है कि हम वैष्णव हैं या अवैष्णव हैं। उन्होंने वैष्णवों की 26 क्वालिटीज बताई हैं। वैष्णवों के अंदर एटलीस्ट ये 26 क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी बताएं? एक, वह सबों पर दयालु होता है। अब जो भगवान का भक्त होगा ना, वो सदैव यही सोचेगा कि मैं किस तरह से दूसरों पर कृपा करूं। ये उसके अंदर स्वतः क्वालिटी आ जाएगी कि वो लोग जो बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, मैं कैसे उनके ऊपर कृपा करूं। तो वो हर समय दूसरों के लिए कृपा के लिए सोचता रहता है, तो सबके लिए दयालु होता है। नंबर दो, उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा संबंध भगवान से है। मैं अगर किसी के लिए हृदय में शत्रुता रखनी होती है तो हृदय को थोड़ा सा हृदय का स्पेस खाली करना पड़ता है, क्योंकि उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसके हृदय में कृष्ण प्रेम इतना लबालब भरा हुआ होता है कि वो कहता है कि कृष्ण, तुम्हारे प्रेम ने मेरे हृदय में इतनी भी जगह नहीं छोड़ी कि मैं किसी और से नफरत भी कर सकूं। किसी और के प्रेम के लिए तो इस स्थान की कोई उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी और से वो प्रेम करे, क्योंकि वो जानता है मेरे प्रेम का केंद्र एक कलो कृष्ण है, अकेले कृष्ण से प्रेम करता है। लेकिन जब वो कृष्ण से प्रेम करता है तो हृदय के अंदर प्रेम इतना भर जाता है कि वो किसी और से भी शत्रुता नहीं कर सकता। नंबर तीन, वह सत्यनिष्ठ होता है। झूठ हम तब बोलते हैं जब हम सोचते हैं कि यदि मैं ये झूठ बोलूंगा तो इससे मेरा लाभ होगा, लेकिन वो जानता है कि कृष्ण को यह झूठ नहीं पसंद लगता। वास्तव में झूठ की परिभाषा भी देखनी चाहिए। कुछ कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन कुछ झूठ ऐसे भक्त लोग अक्सर बोलते हैं कि मुझे भगवान, मतलब अगर वो उसके घर वाले भगवान की भक्ति करने से रोकते हैं तो वो थोड़ा सा छुपाते हैं, या सत्संग वगैरह में कुछ भक्त लोग होते हैं उनको परमिशन नहीं होती है तो वो किसी तरह से छिप छिपा के भगवान की सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। तो वो झूठ जो होते हैं वो कृष्ण को प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से प्राप्त, कृष्ण की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज जो हम फिजूल में दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए हम जब झूठ बोलते हैं तो वो ऐसा भक्त नहीं करता है, और वो जानता है कि मेरा लाभ और हानि सब कृष्ण की ही, कृष्ण के ऊपर ही है, तो वो क्यों झूठ बोलेगा। वो जानता है कि कृष्ण जानता है कि मेरा किस में कल्याण होगा, तो वो हमेशा सत्य बोलता है। नंबर चार है, वह सब पर समभाव रखता है। जानता है कि ये सब जो है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, वो सब बराबर है। मेरा संबंध केवल कृष्ण से है। इनके साथ अगर संबंध है तो मेरे शरीर का है, परंतु मैं तो शरीर नहीं हूं। नंबर पांच, इसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता, क्योंकि जब वो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, भगवान का निष्काम भक्त होता है, तो उसके हृदय से आकांक्षा खत्म हो जाती है, इच्छा खत्म हो जाती है ये प्राप्त करूंगी। अवगुण क्यों प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में, क्यों उदय होते हैं? क्योंकि हमारी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जब उसके अंदर एक ही इच्छा होती है कि मैं कृष्ण को कैसे खुश करूं, तो अवगुण रहते नहीं। नंबर 6, वह उदार होता है। उसका हृदय जो होता है वो बहुत ही विशाल होता है, वो सबके लिए जेनरस होता है, प्रेम करता है सबके साथ, उदार होता है। वो मृदु होता है। मृदु का मतलब होता है वो कभी कटुभाषी नहीं होता है, वो ऐसे शब्द नहीं बोलता जो दूसरों के हृदय को दुख पहुंचाने वाले हो, वो बहुत ही मीठी भाषा बोलता है। और वह सदैव, नंबर 8 है, वह सदैव स्वच्छ रहता है, क्योंकि उसको जान वो पता है कि मुझे अभी सेवा करनी है, भगवान को स्पर्श करना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान को कोई आरती करनी है, तो वो सदैव पवित्र रहता है, ना केवल शरीर से, मन से, वाणी से, वो हमेशा पवित्र रहता है। और नंबर 9, उसकी संपत्ति नहीं होती है, वो जानता है कि हर कुछ जो कुछ है मेरे पास, उसका वास्तव में उसका मालिक जो है वो भगवान है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है उसका है, जो दिया है उसने दिया है, तो वो किसी भी चीज को अपना, मतलब कि ये नहीं सोचता है मैं इस चीज का प्रोप्राइटर हूँ, वो जानता है सब कुछ भगवान की मिल्कियत है। नंबर 10, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। वो कोई भी काम करेगा तो ये नहीं सोचेगा कि उसकी किसी की हानि हो, वो सबके लिए कल्याण कार्य करेगा। नंबर 11, वो शांत होता है, फिजूल में बात नहीं करता, वो जानता है कि मुझे खामखा किसी के लिए बात करूं, निंदा करूं, ये करूं, वो करूं, जो जैसे कर रहा है वो करे। और मौनी, जैसे हमने पढ़ा, संतुष्ट है सतत, वो मौनी रहता है, वो केवल बात करता है तो भगवान के विषय में। नंबर 12, वह श्री कृष्ण का शरणागत होता है। वो भक्त है तो डेफिनेटली वो भगवान को सरेंडर होता है। शरणागति का मतलब कृष्ण तुम जो करोगे उसी में मेरा कल्याण है, ये मुझे श्रद्धा है। नंबर 13, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती है, क्योंकि उसकी कामना, सारी कामनाएं जो हैं वो कृष्ण के अंदर सम्मिलित हो गई हैं, कृष्ण प्राप्ति के अंदर सम्मिलित होती हैं। जैसे एक समुद्र होता है, अलग अलग नदियां होती हैं, तो उनका अपना एक मतलब अपना प्रवाह होता है, लेकिन नदी जब समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी तरह छोटी छोटी कामनाएं, छोटी छोटी इच्छाएं जो होती हैं वो नदियों की तरह हैं, लेकिन जब समुद्र, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम का समुद्र हमारे हृदय में उद्दीप्त हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो जो छोटी छोटी नदियां हैं इच्छाओं की, वो सब उसके अंदर सम्मिलित हो जाती हैं, तो फिर कोई भी कामना बाकी नहीं रहती है। नंबर 14 है, वह विनम्र होता है। महाप्रभु कहते हैं वो तो व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता जिसके अंदर विनम्रता नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान के धाम में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कभी यज्ञ नहीं किया हो, क्योंकि उसे ऐसी स्थिति नहीं मिली होगी, ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, ऐसी सामग्री नहीं मिली होगी कि वो यज्ञ कर सके, इसलिए उन्होंने यज्ञ नहीं किया। भगवान के धाम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कोई तपस्या नहीं की, क्योंकि तपस्या जैसा उसका शरीर नहीं होगा। भगवान के धाम में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कोई दान नहीं दिया, क्योंकि उसके पास इतना धन ही नहीं होगा कि वो दान करे। लेकिन भगवान के धाम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विनम्र नहीं हो। तो भक्त के लिए विनम्रता अति आवश्यक है, वो विनम्र होता है। और नंबर 15, वह स्थिरचित होता है। उसका चित एक जगह पर स्थिर होता है कि मेरा कल्याण केवल कृष्ण भक्ति में है। नंबर 16, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, अपनी इंद्रियों को यूं पशुओं की तरह इधर उधर भागने नहीं देता, अपनी सारी इंद्रियों को, आंखों से भगवान के दर्शन करता है, कर्णों से भगवान के शब्दों को श्रवण करता है, हाथों से भगवान की सेवा करता है, चरणों से भगवान की ओर जाने, भगवान के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की यात्रा करता है, और मुख से भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंबर 17, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता। ऐसे बताते श्री रूप गोस्वामी, अत्याहार मतलब आवश्यकता से अधिक जो खाता है वो व्यक्ति भक्ति में उसका पतन होने का चांस होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिह्वारे लालसा यदि इति उति धाय, तुम्हारी जेब की जो लालसा है, कामना है, कभी ये खाऊं, कभी पिज्जा खाऊं, कभी बर्गर खाऊं, कभी सिजलर खाऊं, कभी चाट खाऊं, कभी ये खाऊं, तो फिर वो क्या होगा, शशनोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, वो इंद्रियों का गुलाम जो है वो कृष्ण को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो हर एक क्षण यही याद रहेगा कि मुझे ये खाना है वो खाना है। लेकिन भक्त आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है, वो देखता है कि बस इतना खाऊं कि मेरा भजन हो सके। तो आगे 18, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, वैसे तो मेरी माया को पार करना अत्यंत कठिन है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दूरत्यया, बहुत कठिन है, परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, क्योंकि भगवान पूरी तरह से भगवान की शरण, भगवान का भक्त पूरी तरह से भगवान की शरण में होता है, इसलिए भगवान जो तीनों गुण वाली जो माया है वो उसको अटैक नहीं करती, वो माया से प्रभावित नहीं होता। नंबर 19, वह सबों का आदर करता है, अमानी न माना देना, ये भक्त की क्वालिटीज है, उसके अंदर आदर का होता है, वो जानता है कि सब जो है वो श्रेष्ठ है, वो सदैव अपने आप को नीच मानता है, अंदर से मानता है, ऐसा नहीं खाली दिखा रहा होता है। कुछ लोग होते हैं वो दिखा रहे होते हैं कि मैं तो है ना नीच हूँ, तुच्छ हूँ, और दूसरों को बोलते हैं आप बोल, लेकिन अंदर से उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी बोले ना कि नहीं नहीं प्रभु आप तो बहुत शुद्ध भक्त हो, लेकिन वो वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर इस तरह की इच्छा नहीं होती कि कोई उन्हें सम्मान दे, वो यही सोचते हैं कि मैं सबका आदर करूं, इसलिए वो सबों का आदर करता है। और नंबर 20, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं होता, वो ये नहीं सोचता, वो ये तो सोचता है कि मैं दूसरों को आदर दूं लेकिन अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं करता। 21, वह अत्यंत गंभीर होता है, मतलब सिंसियर भक्त हमेशा सीरियस होता है, वो इस तरह से नहीं सोचता है कि भक्ति, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये मनुष्य जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ मुझे मिला है, बहुत ही मुश्किलों से मिला है और कभी भी छीन लिया जा सकता है, इसलिए वो गंभीरता पूर्वक अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है। नंबर 22, वह कृपालु होता है, सबके ऊपर दया करता है, किसी के लिए भी द्वेष नहीं होता उसके मन में। और नंबर 23, वह सखा होता है, जैसे भगवान ने कहा मैत्रः करुण एवच, उसके अंदर कृपा होती है, वो सबका मित्र होता है। और नंबर 24 है, वह कवित्वपूर्ण होता है, मतलब इतना उसके अंदर भाषा जो होती है ना वो बहुत ही सुंदर होती है, कवितापूर्ण भाषा करता है, वह पटु होता है, दक्ष एक्सपर्ट होता है। और नंबर 26 है, वह मत्तभाषी होता है, बहुत ही बहुत मीठा बोलता है, क्योंकि वो शब्द बोलता है जो भगवान के शब्द होते हैं, वह नाम बोलता है जो भगवान का नाम होता है। तो इस संसार में सबसे मीठा जो है मधुर मधुर नाम, ये मधुर मधुराधिपति कृष्ण है, वो उससे संबंधित होता है, इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बात करता है, मीठा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं, कोई भक्त लोग होते हैं, उनकी जब कथा सुनते हैं तो उनको बोलते हैं इतना मीठा बोलता है, ऐसा लगता है शुगर कोटेड या चॉकलेट कोटेड शब्द हैं इसके, उनको अच्छा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? मुझे कोई लोग बोलते हैं इतना स्वीट, तो मैं बोलती हूँ ये शब्द स्वीट नहीं है, सॉरी मेरी आवाज स्वीट नहीं है, ये जो मैं शब्द बोल रही हूँ वो बहुत स्वीट है, क्योंकि ये भगवान के शब्द हैं, क्यों हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, साक्षात भगवान के शब्द हैं तो मीठे हैं ना। इसे भक्त केवल भगवान के विषय में बोलता है, भगवान के शब्दों को बोलता है, भगवान के नाम को बोलता है, तो वो बहुत ही सुंदर उसके शब्द होते हैं। और यहाँ पर एक बात सबसे सुंदर समझने की है कि ये सारे गुण कैसे उसके पास कैसे आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे गुण भगवान के हैं, अतः जब वो भगवान की सेवा करते हैं तो श्री कृष्ण के महान गुण उसके अंदर आ जाते हैं। जब कोई नवदा भक्ति स्टार्ट करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो उसका हृदय पवित्र होता है और वह श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को तुरंत समझता है, तब उसमें कृष्ण मानामृत के आदि गुण जागृत हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना, एक व्यक्ति ने श्री प्रभुपाद जी से पूछा कि मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, मुझे काम वासना सताती है और दूसरे भी अपवित्रताएं जो है, मेरी सोच बहुत अपवित्र है, मैं क्या करूं, जब मैं जप करने बैठता हूं तो भी मुझे अपवित्र विचार आते हैं। तब श्री प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि आपको वो वस्तु के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर यह दुर्गुण है या अगर खराब सोच है मेरी, ये नहीं सोचना है। आपको अपनी भक्ति विकसित करनी है। जैसे जैसे आपकी भक्ति विकसित होती जाएगी, जैसे जैसे आपका नाम जब शुद्ध होता जाएगा, जैसे जैसे आपका श्रवण शुद्ध होता जाएगा, जैसे जैसे आप शुद्ध भक्तों का संग करोगे, जैसे जैसे आप विग्रह सेवा करोगे, जैसे जैसे आप भगवान के पवित्र प्रसादम का सेवन करोगे, तो स्मरण करते रहे, जैसे जैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं करते हैं करते हैं, तो फिर हमारे अंदर अपवित्रता नाश हो जाती है और हृदय के अंदर जो गंदगी है वो पवित्र हो जाती है। जो गलत विचार आ रहे होते हैं वो खुद ब खुद चले जाते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर तो ये सारे गुण हैं ही नहीं, फिर मुझे तो भगवान प्यार करेगा ही नहीं। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करनी है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारे गुण हमारे अंदर विकसित होते जाएंगे और हम सब भी भगवान के प्रिय बनते जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हो कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।